लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तानाशाही, निरंकुश सत्ता और यहाँ तक कि संकट में पड़े लोकतंत्रों के तहत मानव के मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती हम सभी भाई बहने हैं की चर्चा कर रहे हैं। यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमें भ्रातृत्व और सामाजिक बंधुत्व में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। संत पापा फ्रांसिस की चाह यही है कि हम मानव सम्मान को पहचान प्रदान करते हुए वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक सार्वभौमिक आकांक्षा को पुनर्जन्म दें। हम सभी नर और नारी के रूप में भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। श्रोताओं, हमने अपने पिछले प्रसारण के अंत में राजनीति प्रेम की चर्चा करते हुए कहा कि करुणा राजनीति के हृदय की आध्यात्मिकता है। यह अपने प्रेम को उनमें व्यक्त करती है जो अति जरूरतमंद हैं। करुणा की निगाहों से देखी गई एक झलक किसी दूसरे के लिए सम्मान का एक कारण बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम गरीबों को स्वीकार करती और उन्हें मानवीय सम्मान प्रदान करते हैं। उनकी संस्कृति में उन्हें पहचानते हैं जो उन्हें मानवीय समाज का अंग होने में मदद करती है। यह हमें इस बात को अनुभव करने में मदद करती है कि रोकथाम की राजनीति को बढ़ावा देकर गरीबी के कलंक को संबोधित नहीं कर सकते हैं। श्रोताओं, ये विचार हमें मौलिक मानवाधिकारों के लिए खतरा या उल्लंघन उत्पन्न करने वाले सभी बातों से निपटने की तत्काल आवश्यकता को पहचानने में मदद करते हैं। राजनीति करने वालों का बुलावा इसलिए हुआ है कि वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में लोगों की जरूरतों की देखरेख करें। एक कार्यात्मक और निजीकृत मानसिकता के बीच में जो अनिवार्य रूप से एक फेंकने वाली संस्कृति की ओर ले जाती है, हमें गरीबों की जरूरतों की कमी को पूरा करने में शक्ति और विनम्रता, प्रयास और उदारता की मांग करती है। यह हमें वर्तमान की पीड़ादायक परिस्थितियों में भी जिम्मेदारी लेने की मांग करता है, जिससे जरूरतमंदों को मानवीय गरिमा प्रदान किया जा सके। इस तरह यह सुनिश्चित करने के लिए गहन प्रयासों को प्रेरित करेगा कि मानव व्यक्ति की स्थिति और गरिमा की सुरक्षा के लिए सब कुछ किया जाए। राजनीति करने वाले कार्यकर्ता हैं जो विभिन्न लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निर्माण का कार्य करते। उनके पास एक व्यापक, यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण है जो उन्हें अपनी सीमाओं के पारे ले जाती है। उनकी सबसे बड़ी चिंता चुनाव तक ही सीमित ना हो, लेकिन वे सामाजिक और आर्थिक रूप में तिरस्कृत लोगों के लिए प्रभावकारी ढंग से निदानों को, उनके हानिकारक परिणामों को खोजने का प्रयास करें, जैसे कि मानव तस्करी, मानवीय शारीरिक अंगों का व्यापार, बालक बालिकाओं का यौन शोषण, बंधुआ मजदूर, देह व्यापार, नशा और हथियारों की बिक्री, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों का निराकरण। इन स्थितियों की भयावहता और निर्दोष जीवन में उनकी संख्या इतनी है कि हमें एक घोषणावादी नाम मात्र वाद में गिरने के हर प्रलोभन से बचना चाहिए जो हमारी अंतरात्मा को मृत बना देती है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारी संस्थाएं इन समस्याओं के खिलाफ सही अर्थ में अपना संघर्ष जारी रखते हैं। इसमें तकनीकी विकास द्वारा पेश किए गए अपार संसाधनों का बुद्धिमता से लाभ उठाना शामिल है। श्रोताओ, हम मौलिक मानव अधिकारों के वैश्वीकरण से अब भी बहुत दूर हैं। इस विश्व की राजनीति को चाहिए कि वह प्रभावकारी ढंग से भूखमरी को खत्म करने की कोशिश करे, जो अपने में प्रथम और जरूरी लक्ष्यों में से एक है। वास्तव में जब वित्तीय अटकलें भोजन की कीमत में हेरा फेरी करती है, इसे दूसरे चीजों के रूप में देखा जाता है, तो लाखों की संख्या में लोग भूख से प्रभावित होते और मर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हजारों टन भोजन फेंका जाता है। यह वास्तव में एक अपमानजनक बात है। भूख अपने में एक अपराध है। भोजन हमारे लिए अपरिहार्य अधिकार है। अक्सर जैसा कि हम अपनी बातों या वैचारिक विवादों को आगे बढ़ाते हैं, हम अपने भाई बहनों को भूख और प्यास से, निवास के बिना या स्वास्थ्य सुविधा की कमी के कारण मार डालते हैं। जरूरत के इन मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हुई बिना रहती हैं। वहीं देह व्यापार मानव के लिए एक कलंक के समान है। एक वैश्विक राजनीति जो अपने को केवल कथन और नेक विचारों तक ही सीमित नहीं रखती, इन बातों को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकती है। इन बातों की अभिव्यक्ति हमारे लिए जरूरी है और हमें इन बातों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति प्रेम अपने को सबों के लिए खुला रखने में भी अभिव्यक्त होता है। सरकारी अधिकारियों को चाहिए कि वे सबसे पहले अपनी ओर से त्याग करें, जो मिलन को बढ़ावा देता और कुछ मुद्दों के निदान हेतु एक मंच तैयार करता है। उन्हें चाहिए कि वे दूसरों के विचारों को सुनने हेतु खुला रहें और सबों को एक स्थान प्रदान करें। धैर्य और त्याग के आधार पर वे एक सुंदर बहुफल्कीय वास्तविकता का निर्माण करने में सक्षम होंगे, जहां सबों को अपने लिए एक स्थान प्राप्त होता है। इस परिदृश्य में आर्थिक समझौते कार्य नहीं करते हैं। यहाँ किसी दूसरे चीज अर्थात जन सामान्य की भलाई हेतु उपहारों का आदान प्रदान करने की जरूरत है। यह सहज और काल्पनिक लगता है, फिर भी हम इस ऊंचे लक्ष्य को नहीं छोड़ सकते हैं। श्रोताओं, ऐसे समय में जब विभिन्न प्रकार के कट्टरपंथी असहिष्णुता जो व्यक्तिगत, सामुदायिक और लोगों के बीच संबंधों को हानि पहुंचा रहे हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के गुणों का आदर करने हेतु अपने को समर्पित करें, क्योंकि यह हमारा प्रेम है जो दूसरों में विभिन्नताओं का स्वागत करता है, उनके सोच विचार के परे उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता, यहाँ तक कि उनकी गलतियों को भी स्वीकार करता है। आज के समाज में कट्टरता, संकुचित सोच तथा सामाजिक और सांस्कृतिक विखंडन के विभिन्न रूपों की उपस्थिति में भी एक अच्छा राजनेता अपना पहला कदम उस ओर उठाएगा जिसके द्वारा दूसरों की आवाज को सुनी जा सके। असहमतियां भले ही संघर्षों को जन्म देती हैं, लेकिन एक रूपता युद्धों को सत्यापित करती जो सामाजिक जीवन के लिए बाधक साबित होती है और संस्कृतियां विनाश का कारण बनती है। हम अपने को एक छोटे से वास्तविक टुकड़े में बंद करते हुए अपने में संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि इस संदर्भ में ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयद के साथ मैंने अंतर्राष्ट्रीय नीति और विश्व अर्थव्यवस्था के वास्तुकार से आह्वान किया है कि वे सहिष्णुता और शांति से एक साथ रहने की संस्कृति को फैलाने में कड़ी मेहनत करें, यथाशीघ्र इस बात हेतु हस्तक्षेप करें जिससे निर्दोषों का खून बहने से रोका जा सके। जब कोई विशिष्ट नीति अपने देश के कल्याण के नाम पर अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा और भय बोती है, तो हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम समय पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उनकी रोकथाम और उनमें सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाएं। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रेतेल्ली तुत्ती पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
मेरे दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरे दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरी सांसें चले तेरा ही नाम ले, मेरी सांसें
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने नया लौदातो सी मंच जारी किए जाने के अवसर पर एक वीडियो संदेश भेजा। लौदातो सी वर्ष का समापन हो गया, किंतु हमारे आम घर की देखभाल का संघर्ष जारी रहेगा। मंगलवार 25 मई को लौदातो सी मंच जारी किए जाने के अवसर पर प्रसिद्ध वीडियो संदेश में संत पापा ने गौर किया कि प्रेरित विश्व पत्र लौदातो सी, जिसको 2015 में प्रकाशित किया गया था, सभी भली इच्छा रखने वाले लोगों को निमंत्रण देता है कि वे पृथ्वी की देखभाल करें, जो हमारा आम घर है। संत पापा ने दुख प्रकट करते हुए कहा, यह घर जो हमारी मेजबानी करता है लंबे समय से पीड़ित है, उन गांवों से जिनको हमने अपने हिंसक रवैये से दिया है। उन्होंने जोर दिया कि वास्तव में मौजूदा महामारी ने अब प्रकृति एवं सबसे अधिक परिणाम भुगतने वाले गरीबों के रोने को और भी मजबूत तरीके से प्रकाश में लाया है। यह उजागर करते हुए कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और हमारा स्वास्थ्य पर्यावरण के स्वास्थ्य से अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि हमें एक नए पारिस्थितिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस तरह हम दुनिया में रहने के अपने तरीके, जीने की हमारी शैली, पृथ्वी के संसाधनों के साथ हमारे संबंध और सामान्य रूप से मानवता एवं जीवन जीने के हमारे तरीके को बदल सकेंगे। संत पापा फ्रांसिस ने पेंतेकोस्त महापर्व के बाद कलीसिया में पवित्र आत्मा की सक्रियता की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने 25 मई के ट्वीट संदेश में कहा, सांत्वना दाता कलीसिया से कह रहे हैं कि आज दिलासा का समय है, या गैर क्रिस्तता से संघर्ष करने की अपेक्षा आनंद पूर्वक सुसमाचार की घोषणा करने का समय है, या पुनर्जीवित प्रभु के आनंद का वाहक बनने का समय है, न कि सांसारिकता के नाटक के लिए शोक मनाने का। अपने दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा ने कहा, यह दुनिया को प्यार करने का समय है, परंतु दुनियादारी का आलिंगन करने का नहीं। यह नियमों और कानूनों पर ध्यान देने की अपेक्षा करुणा का साक्ष्य देने का समय है। यह पौत्र आत्मा का समय है। यह सांत्वना दाता में हृदय की स्वतंत्रता का समय है। संत पापा फ्रांसिस ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म फ्रांचेस्को दिखाए जाने के अंत में 24 मई को करीब 100 आवासहीन एवं शरणार्थी लोगों से मुलाकात की। वैटिकन के पॉल सिस्टम सभागार में सोमवार शाम को हुई यह छोटी मुलाकात सौहार्द एवं विस्मयपूर्ण थी। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने इस बात की पुष्टि दी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म फ्रांचेस्को को फिल्म निदेशक एवं लौदातो सी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद संत पापा ने उनसे मुलाकात की। ब्रूनी ने बतलाया, पोप फ्रांसिस पॉल सिस्टम सभागार के परिकोष्ठ गए, जहां करीब 100 आवासहीन एवं शरणार्थी लोगों से मिले, जिन्हें फिल्म देखने के लिए निमंत्रित किया गया था। संत पापा फ्रांसिस ने इटली के पोत्तारोने में रविवार को हुई केबल कार दुर्घटना के शिकार लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है, जिसमें कुछ बच्चों सहित कुल 14 लोगों की मौत हो गई। रविवार 23 मई को इटली के पोत्तारोने में एक केबल कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 बच्चों को गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनमें से एक बच्चे की मौत हो गई। सिर्फ 5 साल का एतन जिंदा रह गया है। यह स्थान नोवारा धाम प्रांत में आता है। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन ने संत पापा फ्रांसिस की ओर से नोवारा के धर्माध्यक्ष फ्रांको जूलियो ब्रम्बिल्ला को एक तार संदेश भेजा। संदेश में उन्होंने लिखा, संत पापा फ्रांसिस ने बड़े दुख के साथ इस भयंकर दुर्घटना की खबर सुनी। उन्होंने अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों एवं शोकित प्रियजनों के लिए अपनी प्रार्थना का आश्वासन दिया है। पीड़ित लोगों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त करते हुए उन पर प्रभु के दिलासे की याचना की है तथा अंततः अपनी आशीष प्रदान की है। इस बीच रविवार को हुए इस दुर्घटना की जाँच की जा रही है। जांच करने वालों का कहना है कि केबल कार के गिरने का कारण सुरक्षा प्रणाली की कमी हो सकती है। आज डॉक्टर एतन को जगाने की कोशिश करेंगे, जो पाविया निवासी इसराइली मूल की दंपति का बेटा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बच्चे और उसके परिवार बीरान के लिए प्रार्थना की अपील की है, जिनकी मौत दुर्घटना में हो गई। इटली के राष्ट्रपति सर्जो मत्तारेल्ला ने सोमवार को अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सुरक्षा नियमों का सम्मान करने की याद दिलाई। कल इताली कार्तिक धर्माध्यक्षों ने भी अपना सामीप्य एवं संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी प्रार्थना का आश्वासन दिया था। इटाली कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन की 74वीं आम सभा 24 मई को रोम में 200 धर्माध्यक्षों की उपस्थिति में शुरू हुई। आम सभा के शुरू में प्रतिभागियों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने 3 विषयों पर प्रकाश डाला, जिन पर सभा में चर्चा की जाएगी: सेमिनरी, कलीसियाई अदालत और सिनड। इस वर्ष की आम सभा की विषय वस्तु है पुनर्जन्म के समय में सुसमाचार की घोषणा। सभा के दौरान उत्तरी एवं मध्य क्षेत्रों के लिए 2 उप अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा। उनके साथ आर्थिक मामले की समिति के सदस्यों एवं धर्माध्यक्ष आयोगों के अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा। सवाल जवाब के सत्र की ओर बढ़ने से पहले संत पापा ने सभा की विषय वस्तु पर चिंतन किया। सिनट के संदर्भ में उन्होंने याद दिलाया कि इसे नीचे से ऊपर प्रक्रिया से शुरू होना है, जिसको एक छोटे समुदाय में और एक पल्ली में शुरू किया जा सकता है। यह एक प्रक्रिया है जिसके लिए धीरज और काम की आवश्यकता है। लोगों को स्वतंत्र रूप से बोलने देना तथा ईश्वर की प्रजा की प्रज्ञा को स्थान देना है। धर्म सभा का यह रास्ता, जिसको संत पापा फ्रांसिस ने इताली कलीसिया के लिए दिखाया है, उससे 2015 में फ्लोरेंस के सम्मेलन में उल्लेखित किया गया था। संत पापा ने प्रशिक्षण के दौरान होने वाली गलती के खतरे की भी चेतावनी दी और गुरुकुल छात्रों की भर्ती करने में विवेक का सहारा लेने की सलाह दी। यरूशलेम के लातिनी प्रातिधर्माध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष पियर बत्तिस्ता पित्साबाला OFM ने पेंतेकोस्त रविवार को अपने उपदेश में एकता पर जोर दिया। पेंतेकोस्त महापर्व के अवसर पर पौत्र भूमि के डोमेशन महागिरजाघर में ख्रिस्त त्याग अर्पित करते हुए महाधर्माध्यक्ष पियर बत्तिस्ता ने याद दिलाया कि पौत्र आत्मा का कार्य एकजुट करना है, जो भाईचारा उत्पन्न करता, विविधता को एक साथ लाता, और यही कलीसिया का उद्गम है। उन्होंने कहा कि पौत्र आत्मा प्रदत्त जीवन एकाकी में जीते हुए सिर्फ अपनी पूर्णता की खोज करने का जीवन नहीं है, बल्कि उन भाइयों से मुलाकात करना है जिनके साथ हम अपना जीवन साझा कर सकते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।